नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड को विश्व बैंक से 680 करोड़ रुपए का सहयोग मिलेगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण के लिए अनुशंसा दी। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों के निर्देश दिए। और दून विश्वविद्यालय में आगामी 5 नवम्बर को दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है बल्कि राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है।
आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी, आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथियों, पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड में बेहतर सेवा वितरण के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की महत्वाकांक्षी परियोजना को विश्व बैंक के विचारार्थ अनुशंसित किया है। इस परियोजना के तहत प्रदेश सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सक्षम, पारदर्शी, जवाबदेह बनाने और सेवा प्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विश्व बैंक को लगभग 680 करोड़ रुपए की बाह्य सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक के भारत कार्यालय नई दिल्ली के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर पॉल प्रूसी को औपचारिक रूप से प्रेषित किया है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड सरकार के इस प्रस्ताव की प्रति संलग्न करते हुए इसे विचार और स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की वित्तीय प्रणाली को तकनीकी रूप से अधिक आधुनिक, कुशल और पारदर्शी बनाना है ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक तेजी, सटीकता और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अनुशंसा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये उत्तराखंड के वित्तीय सुधार और सुशासन के प्रयासों की बड़ी स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से राज्य में राजकोषीय अनुशासन, वित्तीय डेटा पारदर्शिता और सेवा प्रदाय तंत्र की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार आएगा। प्रदेश के वित्त विभाग के अनुसार ये परियोजना राज्य की ई गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को नई दिशा देगी। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। जीएसटी सुधारों से कृषि क्षेत्र और किसानों को हो रहे लाभों पर पेश है ये रिपोर्ट।
नए कर ढांचे के अंतर्गत विभिन्न कृषि उपकरणों जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और हार्वेस्टिंग मशीनरी पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे यह आवश्यक उपकरण किसानों के लिए और अधिक सुलभ हो गए हैं। जीएसटी 2.0 के तहत जैव कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी 5% जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है, जिससे जैव आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उर्वरक उत्पादन में उपयोग होने वाले कच्चे माल जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर भी अब केवल 5% GST लग रहा है, जिससे उत्पादन लागत में कमी होगी। इन कर कटौतियों से कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा, श्रम लागत घटेगी और फसल उत्पादन में सुधार होगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
निर्वाचन आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। कल नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का 2 दिन का सम्मेलन संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी भी शामिल थे। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के प्रश्नों पर भी स्पष्टीकरण दिया गया। देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में आगामी 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस एक दिवसीय सम्मेलन में उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा पर प्रवासी उत्तराखंडी अपने नजरिए को सामने रखेंगे। साथ ही ये सुझाव भी देंगे कि उत्तराखंड को भविष्य में और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस सम्मेलन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है, जो आज देर रात्रि तक चलेगी। अभी तक विभिन्न राज्यों के 200 प्रवासियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट www.prawasiuttarakhandi.uk.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अभी तक इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड आदि प्रदेशों से 200 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रवासियों को एक मंच पर लाने और उन्हें अपनी मातृभूमि से सक्रियता से जोड़ने तथा राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सम्मेलन के लिए प्रवासी उत्तराखंडियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों के सुझाव उत्तराखंड के विकास का रोड मैप तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रवासी प्रकोष्ठ के सदस्य सुधीर नौटियाल ने सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले सत्रों के बारे में जानकारी दी।
इस बार ये रखा है कि देखिए, पर्यावरण एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है। हमें विकास भी चाहिए, पर्यावरण का संतुलन भी बना रहना चाहिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एक सत्र उस पे डेडिकेटेड होगा कि कैसे हम लोग विकास के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित कैसे करें, उस पे चर्चा होगी। और दूसरा सत्र ये होगा कि जो सामाजिक सेक्टर है हमारा, जिसमें हमारे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन सब विषयों पे, संस्कृति पे भी चर्चा होगी। तो 2 सत्र है मेनली, और ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि प्रवासी आपस में भी वार्ता कर सके, उत्तराखंड के जो यहाँ पे हमारे मंत्रीगण हैं, अन्य प्रबुद्ध गण हैं, उनके साथ भी उनके चर्चा हो सके, और एक सत्र विशेष रूप से मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के लिए भी रखा गया है इस बार। इसके अलावा सांस्कृतिक संध्या भी होगी।
भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को देहरादून में आगामी 27 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। राज्यसभा सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से देशभर में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव के साथ ही उत्तराखंड में भी 27 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ देहरादून से किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर राज्य की प्रतिभाओं को एक उचित मंच प्रदान किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड को विश्व बैंक से 680 करोड़ रुपए का सहयोग मिलेगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण के लिए अनुशंसा दी। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों के निर्देश दिए और दून विश्वविद्यालय में आगामी 5 नवम्बर को दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।